दो चीज समझने की आज कोशिश करेंगे। एक तो आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन क्या है। लोगों के मन में बड़ी गलत फहमियाँ आध्यात्मिक जीवन के बाद। दूसरा, जो आपने ओम आज गाया गणेश स्तुति की, उसका अभिप्राय क्या, किस ढंग से करें कि हमको उसका मैक्सिमम एडवांटेज मिले। पहले आध्यात्मिक जीवन के बारे में तीन चीज समझने की। हर आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति तो होता ही है। भगवत प्राप्ति से भगवान का दर्शन, दर्शन तो हुआ, खत्म हो गया, चला गया। भगवत प्राप्ति का मतलब भागवत चेतना, जैसे आज माइंड आप में डेवलप्ड है, मनोमय चेतना डेवलप्ड है, प्राणमय चेतना डेवलप्ड है, विचार आते हैं, स्मृति रहती है, इमोशंस उठते हैं, इम्पल्सेज उठते हैं, इसी तरह उनके परे इंट्यूशन और इंट्यूशन के परे भागवत चेतना है। तो अगर भागवत चेतना जागृत होगी तो आपके संगीत में, आपके लिखने में, घर के काम में, बच्चों को देखने में, हर एक में एक नई चीज आने। भागवत चेतना का विकास का मतलब पूजा पाठ जप ये नहीं, वो तो साधन है जिससे कि भागवत चेतना से संबंध जुड़ता है, लेकिन लक्ष्य भागवत चेतना से संबंध जुड़ना। दूसरी सीढ़ी है उस चेतना के आदेशानुसार काम करना। ये हमारी गीता की टीचिंग आ गई, जो गीता हमको बता गई कि भगवत प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन की शुरुआत है, उसके बिना तो जीवन अज्ञानमय है। अगर एक बार भागवत चेतना से संबंध जुड़ा तो वो धन कमाने की तरह है, अगर धन का उपयोग नहीं करोगे तो कमाने से कोई फायदा नहीं है। अगर भागवत चेतना के अनुसार अपना जीवन संचालित नहीं करोगे तो जैसे आप बाजार जाती हैं, साड़ी सिलेक्शन दिमाग से सोचती हैं कौन सी करूं, और तो भागवत चेतना हर चीज में गाइड करेगी आपको। भगवान मनुष्य के अंदर छिपी हुई सबसे ऊंची पूर्ण चेतना है। साकार क्या होता है, निर्गुण क्या होता है, निराकार क्या होता है, और साकार निराकार निर्गुण सगुण चारों का भेद आज थोड़े में समझ लेंगे तो आपको आपकी साधना में बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि ये साकार भी सच है, निराकार भी सच है, निर्गुण भी सच है, सगुण भी सच है, चारों से ही मेल होना चाहिए, एक से मेल होने से फिर वो चौथाई हो जाता है। तो सबसे प्रथम ये सोच लेना है कि भगवत प्राप्ति कैसे करनी, वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि भगवत प्राप्ति जीवन की शुरुआत है, भगवान के आदेशानुसार दैनिक जीवन बिताना, हर क्षण उसके आदेशानुसार काम करना, हर क्षण उसको समर्पित हो, ये उसकी दूसरी सीढ़ी है। लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं, आपको भगवान की प्रेरणा आई लेकिन उसके आदेशानुसार काम करने में आपका शरीर सीमा रखेगा, शरीर में बुढ़ापा है, रोग है, आपके दो हाथ हैं, 2000 हाथ तो नहीं है, दो हाथ के जितना ही काम कर सकोगे, आपको दो तीन भाषाओं का ज्ञान है, दो तीन भाषाओं में ही भगवान का ज्ञान व्यक्त कर सकोगे। तो जो भगवान की प्रेरणा आपको आएगी वो पूर्णतया आपके जीवन में नहीं उतर सकती, उसको जीवन में पूर्णतया उतारने के लिए दो चीज आपको और करनी पड़ेगी, एक नए शरीर का निर्माण, एक तेजोमय शरीर जिसमें बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, आपने कंसंट्रेट किया, भागवत चेतना आपके दिमाग में उतरी, जिसको कम्युनिकेट करना है बिना वाणी से बोले कम्युनिकेशन, प्राणमय चेतना में उतरी बिना बोले, बिना चेहरे पर लाए कम्युनिकेशन हो गया, और शरीर की तो सीमाएं ही खत्म हो जाएगी। एक नए शरीर का निर्माण, एक नए इंस्ट्रूमेंट का निर्माण जो भागवत चेतना को और पूर्णतया प्रकट कर सके, ये हुए बिना भागवत चेतना की प्रेरणा भी अपूर्ण रही। अब आपको कोई कह दे, एक दिन एक मीटिंग में हम बैठे थे तो एक सज्जन ऐसे ही बैठे थे, मैंने कहा अगर तुझे कोई अभी 50 अरब रुपया दे तो क्या करेगा, बोले मैंने तो सोचा ही नहीं, मैं तो वापस कर दूँ, इसका क्या उपयोग करना। मैंने कहा मुझे तो कोई 10,000 अरब भी दे तो कम है, हमारा प्रोग्राम तो इतना बड़ा है, सारी दुनिया को जहां बदलना है। तो इस तरह अगर आपका लक्ष्य है कि आप भगवान की इंस्ट्रूमेंट बन जाएं, क्यों बन जाएं वो भी बात करेंगे, तो लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा आपका शरीर मन प्राण में भी भगवत चेतना जागृत हो जाए। और कैसे हो सकती है वो भी आप, कितना आपके आधी घंटा रहता है, 20 मिनट, एक घंटा, तब समय पर्याप्त है, तब ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करें, इसमें भी एक अधूरापन है, हर एक में भगवान है लेकिन हर एक में उसे अलग अलग लीला करनी है, किसी में संगीत की करनी है, किसी में खाना पकाने से, मतलब केवल संगीत करता रहे ये नहीं, उसके कार्यक्रम 10 होंगे लेकिन एक कार्यक्रम विशेष होगा जिसमें उसे भगवान को विशेष रूप से प्रकट करना। तो एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ पैसे के लिए किसी को काम नहीं करना, हर व्यक्ति को यह सुविधा हो कि वो काम चुने जो उसे पसंद हो और उसके विकास के सारे साधन मिले,
ये दोनों हुए बिना आदमी को अपने विकास के साधन मिले और अपने विकास का फल वो दूसरों को दे, संगीत में दे के काम में दे, ये हुए बिना भागवत चेतना की जो प्रगति की जो कर्मयोग की साधना की चीज है वो अधूरी है। तो अगर आप लोगों को ये तीसरे में पहले दो तो इंक्लूडेड है, भगवान की जब संबंध नहीं हुआ तो आप कैसे उसको प्रकट करोगे, उसके आदेशानुसार काम करने से आपका मन प्राण शरीर से जुड़ जाता है हर काम में। फिर आपको बच्चा बीमार है किस डॉक्टर को बुलाऊं सोचने की दरकार, अपने आप बताएगा किसको बुलाओ या मत बुलाओ या क्या दे, कि वह या तो वह पूर्ण चेतना या पूर्ण चेतना नहीं है, उससे संबंध होगा तो हर चीज में गाइडेंस आएगी। ये प्रोग्राम कैसे हासिल हो, इसमें ओम का क्या प्रोग्राम है, ओम किस तरह, ओम का जब कैसे मदद पहुंचा सकता है, गणेश का ध्यान कैसे पहुंचा सकता है, वो क्या कार्यक्रम करें, ये हम बहुत थोड़े में समझने की कोशिश करें। मनुष्य की चेतना के कई अंग हैं, शरीर, प्राण, मन, आत्मा, जीव और इंटरमीडिएट प्लेन्स, इंट्यूशन और दूसरे। मनुष्य में जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, आज के विज्ञान के अनुसार, आज के यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, मनुष्य ने अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का 5% भी डेवलप नहीं किया, और योग के अनुसार मनुष्य ने अपनी क्षमताओं का 0.00001% भी डेवलप नहीं किया। तो आप देख सकती हैं कि आप कितनी कम जिंदगी बिता रही हैं, कितनी सीमाओं के अंदर अपनी जिंदगी बिता रही हैं। जिंदगी भर रोते रोते ही गुजरती है, क्या करूं इसमें, क्या करूं इसमें, क्या करूं इसमें, क्या करूं इसमें, क्या करूं। ये दुविधा तो हटे इंसान की, एक नई जिंदगी का सिलसिला तो शुरू हो। ये सिलसिला शुरू होना आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है, ये सिलसिला पूर्ण हो जाना आध्यात्मिक जीवन की सफलता है। पूर्ण हो जाने का मतलब एक आज का समाज आर्थिक समाज है, यहाँ चीज खरीदी बेची जाती है, डॉक्टर फीस लेगा, मास्टर फीस लेगा, आदमी नौकरी लेगा, टैक्स देगा, घूम फिर कर वहीं का वहीं रह जाता है। तो एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ पैसा सर्कुलेशन नहीं है, आदमी को खाने पीने की सारी चीजें मिले और आदमी काम पैसे के लिए नहीं, भगवान की अभिव्यक्ति के लिए करे, उसके लिए संगीत, उसके गले से भगवान गाए, उसके हाथ से भगवान खाना पकाए, इतना उसका समर्पण भगवान के प्रति पूर्ण हो जाए। ये साधना के बारे में थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो जैसा इन बहन ने कहा, अगर मां श्री अरविंद के बारे में कुछ जानना तो वो भी थोड़े में बताऊँ। भगवान हिंदू धर्म के अनुसार सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म चेतना है, राम और कृष्ण अवतार हुए उसमें ब्रह्म चेतना उतर आई, लेकिन ब्रह्म चेतना एक ही है, भगवान एक है, दो भगवान नहीं है, भले क्राइस्ट हो, भले मोहम्मद, भले बुद्ध हो, भगवान एक। उस भागवत चेतना से संबंध करना पहली सीढ़ी। भागवत चेतना एक चेतना है जिसमें मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट होते ही सृष्टि शुरू हो गई, उस चेतना में मूवमेंट नहीं है, निश्चल है। वो चेतना प्रकाशमय है, स्वयं प्रकाश है, वो चेतना सर्वज्ञ है, सर्वत्र व्याप्त है। तो जो हमारा मार्ग गीता बता गई, ईश उपनिषद बता गए, हिंदुस्तान के मुनि वगैरह वही मार्ग बता गए, उसमें भक्ति का कहाँ स्थान है, कर्म का कहाँ स्थान है, वो भी आएंगे, क्योंकि भक्ति और कर्म के बिना ध्यान अधूरा है। तीनों के सम्मिश्रण से ही भगवत प्राप्ति, भागवत चेतना से जुड़ना, अपनी पराकाष्ठा, अपने चरण सीमा पर पहुंचेगा। तो पहला प्रयास होना चाहिए अभिप्सा। आप 5 मिनट यहाँ आए, घंटा बैठे, वीक में 2 दिन आए और बाकी दिन वही रगड़ पट्टी रही, तो आप थोड़ा ऊंचे उठे, 1 कदम ऊंचे उठे, 2.5 कदम नीचे उतरे, उससे तो कुछ नहीं होने का। सतत आप में अभिप्सा रहनी चाहिए, भगवान मेरे जीवन में प्रकट हों, मेरे शरीर में प्रकट हों, मेरे कार्यक्रम में प्रकट हों, मुझे गाइड करें। एक चीज बड़ी समझने की है, अर्जुन और कृष्ण बड़े मित्र थे, लेकिन कृष्ण ने कभी अर्जुन को बैठकर समझाया नहीं कि क्या करनी है, क्या करनी है। जब अर्जुन किन कर्तव्य मूड हो गया, मैं क्या करूं, मेरी वाइफ का इंसल्ट हुआ है, मेरा राज छीन लिया गया है, मैं क्षत्रिय हूं, इसके लिए मैं अपने गुरु को मार दूं, अपने बाबा को मार दूं, ऐसे दूध से खून से तर राज्य सिंहासन पर बैठ के मैं क्या करूं। तो जो फिलॉसफी हमने पढ़ी वो सारी गलत दिखती है, वो फिलॉसफी जो हमको सिखाती है कि अन्याय हुआ इसलिए अपने गुरु और बाबा को मार दो, ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं। और जब कृष्ण को कहता है शिष्यस्तेहं शाधीमान त्वां प्रपन्नं, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हूं, आप मुझे गाइड करो, तब कृष्ण से गाइड करते, ऐसा नहीं कि दोस्तों पुराने थे तो आप यहां बैठेंगे शरण गालेंगे और घर आ जाकर भूल जाएंगे शरण को, तो काम नहीं। उस शरण को मतलब भगवान के कंट्रोल में आप आ गए। शरण का मतलब ये होता है, ये तो नहीं होता भगवान मैं आपकी शरण हूं, मैं कहूंगा ऐसा आप करते रहो तो फिर भगवान आपकी शरण हो गया, आप कहां उसकी शरण। शरण का मतलब ये कि मैं आपकी शरण हूं, आप जैसा गाइड करोगे मैं करूंगा, मुझे कहां ज्ञान है। पूर्ण ज्ञानी तो आप हो, पूर्ण कृपालु तो आप हो। तो पहले समझने की चीज है, अगर भगवान आपको गाइड करेगा तो आपका घर का काम बेटर चलेगा कि बस चलेगा, और घर बच्चों को बेटर देखोगे कि वर्ष देखोगे, हर चीज बदल जाएगी। ये मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अगर भागवत चेतना ने हमें गाइड किया तो हमारा दैनिक जीवन, जो मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में हमने दीवार खड़ी कर दी, वो दीवार पहले तोड़नी होगी कि नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ के बिना हमारी मटेरियल लाइफ अपने चरम विकास पर नहीं पहुंच सकती। यानी वो तो माइंड के, जब हम माइंड से गाइड करें माइंड तक पहुंचेगी। जिसकी लाइफ इमोशनल होती है, गुस्सा आ गया ये कर दिया, जेनरोसिटी किया वो कर दिया, उसकी लाइफ उथल पुथल ही रहेगी। और जिसकी लाइफ तामसिक है, तीन जैसे तीन गुण हमारे यहाँ कहीं, तामसिक ही रहेगी। तो भागवत चेतना से संबंध होने से आपका भौतिक जीवन बेटर होता है। ये भाव मन में आते ही आधा झंझट खत्म हो। एक दूसरा भाव, अभिप्सा कैसे जगानी, इस पॉइंट को ले रहा हूं कि मुझे भगवान मिले। एक दिन हमने बैठे बैठे पुंडिचेरी में, कोई 30 साल पहले की बात होगी, अपने आप से पूछा अगर भगवान हमारे आगे प्रकट हो, कहे तू मांगेगा सो दूंगा तो मुझसे क्या मांगे। अगर कोई मुझे कहेगा तुझे 5 मिनट में शरीर छोड़ना है तो 5 मिनट हम क्या करना चाहें कि भाई जिंदगी में ये कर पाए, दोनों का एक ही उत्तर था, एक भगवान के प्रति पूर्ण सम्मान। जाने के पहले कम से कम इंसान ये तो कह सके कि मैं तेरा हर तरह से तेरा, हर तरह से तेरा कहने का मतलब, जैसे टेनिस में आपने बॉल उसके पास उसमें फेंक दी कोर्ट में, तो वो नहीं खेलेगा तो आपका कसूर नहीं है। जब आपने कहा भगवान तो गाइड कर, वो नहीं गाइड करेगा तो किसका कसूर है। आपने ये कहते ही उसको अपनी बोल ली। जिस दिन आप सच्चाई से कहोगे मुझे तो तुझे ढूंढना भी नहीं आता, तू कहाँ है, कैसे प्रकट होता है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, इतना ही मालूम है कि तू सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र व्याप्त है, मैं तुझे नहीं देख सकता हूं, तू मुझे देख सकता, मैं तेरी भले ना सुन सकूं तू मेरी सुन सकता है, मैं तेरी गाइडेंस चाहता हूं। अब तू गाइडेंस न देगा तो मैं तो जैसा है चलना ही पड़ेगा, अब मेरा कसूर नहीं। तो भगवान ने गीता में कहा मेरा खुद का अनुभव है, जो साधना में आई सबका अनुभव है, फिर वो आपको रीच आउट करता है, वो आप में जीवन में प्रकट हो जाता है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता। ये एक ही क्यों अंदर से प्रकट होना है, बाहर कहां ढूंढना है। तो अंदर से प्रकट तब होगा जब आपकी सुनने की कोशिश करोगे, वो कहीं से आना थोड़ी है, आप ही नहीं सुनना चाहते हो, आप ही नहीं देखना चाहते हो। इसके लिए सबसे पहली सीढ़ी अभिप्सा, आस्पिरेशन, कॉन्स्टेंट आस्पिरेशन, आई वॉन्ट टू बी गाइडेड बाय लेट डिवाइन अवेकन इन माई लाइफ, लेट डिवाइन लुक आफ्टर माई चाइल्ड एंड गाइड मी, जितना मेरे से काम कराना हो करा ले, अंत में वही देखे, मुझसे तो बेटर ही देखेगा। ये घर भगवान का है, मुझे बताए मैं कैसे फर्नीचर चाहूँ, तो बेटर फर्नीचर लाऊंगी खराब लाऊंगी। भगवान की जो चीज मान ली, शरीर भगवान का मान लोगी तो उसको बेटर रखोगी खराब रखोगी, सब कुछ उसका है। अपने आप ही सेकंड स्टेप आ जाएगी, सब कुछ उसका है, वो कहे वैसे कर। फिर आप देखेंगे कि ये एस्पिरेशन को हमारे वेदों में अग्नि कहा, जो मनुष्य में संकल्प है, विल है, यही अग्नि है, यही तपस्या है। वो विल आपकी 24 घंटे चलनी चाहिए, खाते वक्त ये खाना मुझे भगवान की चेतना लाए, मेरे अणुअणु में भगवान की चेतना का विकास कर, बोलने के पहले 2 मिनट रुको, मेरी वाणी से वही निकले जो भगवान निकालना चाहिए। अपने बच्चे को किसी को देखो तो उसमें भगवान को देखो, आप आश्चर्य करोगे उधमी बच्चा शांत होने लगता, बच्चा जो कमजोर है उसमें भगवान का ज्ञान उदय होने लगता है। कैसे वो आज समय होगा तो आज नहीं तो फिर कभी बताएंगे आपको। इस चेतना में जो सगुण की उपासना करता है वो बच्चों में सिद्धियों का विकास कर सकता है, यह सगुण का फायदा। निर्गुण की साधना तो करनी होगी, निर्गुण निराकार में तो जाना होगा, वहां जाकर फिर सगुण साकार को लाना होगा नीचे, साकार तो खुद बनना होगा कि अणु में भगवान की चेतना जागृत हो जाए। और सगुण का मतलब भगवान के एक एक गुण को लेकर उसमें लीन होना, कि आप किसी रोगी को ठीक करना तो आप वो चेतना उतार लाए, किसी को पैसे की तकलीफ हो तो महालक्ष्मी की चेतना उतार लाए, बाधा है तो गणेश की चेतना उतार लाए, अभी तो प्रेयर ही कर रहे हो आप मीडियम बन जाओ। सगुणता का मतलब भगवान के एक एक गुण, एक एक सिद्धि, एक एक शक्ति का मीडियम बनना। तो इसलिए आवश्यक है पहले निर्गुण निराकार में जाओ, फिर सगुण और साकार में उसको लाओ। लेकिन ये मार्ग सबका एक ही होना जरूरी नहीं है, कोई पहले सगुण साकार भी कर सकता है, फिर निर्गुण निराकार में जा सकता है, लेकिन एक जनरल आपको कह दिया जिसमें कि सफलता मिलने में सुविधा हो। एक हो गया एस्पिरेशन। एस्पिरेशन के साथ दूसरा भाव होना चाहिए सरेंडर। आप चल रहे हो, पांव में प्रकाश का ध्यान करो, ये प्रकाश मेरे पांव को जाए। आप खाना पका रही हैं, हाथ में प्रकाश का ध्यान करो, मैं नहीं पकड़ रही हूँ, भागवत चेतना इस बर्तन को पकड़ रही है, मैं सब्जी नहीं रख रही हूँ, भागवत चेतना रख रही हूँ। हर चीज में अनुसूत परमिएटिंग भागवत चेतना को देखना, प्रकाशमय रूप से देखना। प्रकाश में भी अलग अलग ध्यान करने से अलग अलग प्रभाव आते हैं, योग बड़ा साइंटिफिक है, वो अलग से समझेंगे। प्रथम चीज जो समझ लेने की है वो ये कि हर वक्त आपको ये ध्यान बनाए रखना। अगर आप ध्यान बनाए रखोगे तो जब यहाँ मीटिंग में आओगे आप देखोगे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि सारे दिन भर अपने प्रोग्राम बनाए रखा। सोने जाने के पहले जिंदगी का एक तिहाई भाग आप सोते हैं, ध्यान करिए भगवान मैं। मुझे याद है एक सज्जन ने मुझे अपने घर इनवाइट किया था, वृद्ध सज्जन है, तो उनकी ग्रांड डॉटर एक प्याला कॉफी लेकर आई हमारे लिए, तो हमने देखा उस लड़की के चारों ओर प्रकाश प्रकाश, 9-10 साल की लड़की होगी। तो मैंने कहा मम्मी तुझे सपने आते हैं? बोले हाँ आते हैं। क्या करती है? बोले जब मैं सोने जाती हूँ तो अपने दोनों हाथ मुँह करके सोचती हूँ भगवान तू यहाँ आके सो, छोटी सी बच्ची, और फिर तू क्या करती है? भाई जी मुझे बहुत चीज़ें दिखती हैं। क्या दिखती है? और उसने जो बताया मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि जिसके चारों ओर प्रकाश है, हमारा एक जन्म तो नहीं, हम तो कई जन्मों की बैग लेकर आए हैं साथ में, और मैंने देखा कि भगवान मुझे इसके घर इसीलिए ले गया है, इस बच्ची के लिए ले गया है, क्योंकि इस बच्ची की ये थर्ड स्टेज की तैयारी है कि जहाँ उसका अणु भगवत चेतना के लिए जागृत हो। तो समझ लेने की चीज़ ये है कि ये समर्पण का भाव नींद में सबसे ज़्यादा मदद पहुँचा सकता है। अगर आप मेडिटेशन करके सो रात को सोने के पहले कि मैं आज भगवत चेतना में रहना चाहती हूँ, जो आपका इष्ट हो, बाबा हो, राम हो, कृष्ण हो, ओम हो, प्रकाशमय रूप से तकिए पर जैसे आप उसके चरणों में सो रहे हो, उसका प्रकाश आपके मन प्राण शरीर में आ रहा है, आपकी सारी चेतना प्रकाशमय हो गई है, आप उस प्रकाश में लय हो, लीन हो, और उसमें जो नींद आ जाए वो आप देखो कि क्या तमाशा। आप 2 दिन करके देखो, देखो क्या तमाशा। सुबह उठो तो बिस्तर के बाहर कूद के मत उठो, शांत शांत अपने आप को बटोरो कि मैंने नींद में क्या देखा, क्योंकि नींद सपने आपके अंतर जगत अंतर चेतना को बताते हैं। नींद में ड्रीम्स भी आते हैं, विजन्स भी आते हैं, भूतकाल के भी आते हैं, भविष्य काल के भी आते हैं, पूर्व जन्म के भी आते हैं। तो अंतर जगत के परफेक्शन के लिए इस 8 घंटे को टाइम देना 15 मिनट खराब नहीं जाएगा। आप उस चीज़ को एक कागज पे लिखो, डायरी में लिखो, फिर सपनों का कैसे अर्थ लगाना, कैसे इंटरप्रिट करना, फिर कभी मुलाकात होगी आपको बताएंगे। आज बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, डिटेल चीज़ें पीछे। वाणी का संयम हो गया, भोजन का ध्यान हो गया, नींद का हो गया, अब कर्म, दिन भर तो कर्म करता रहता है, सुबह उठा, टॉयलेट गया, फिर भले पूजा की, पूजा भी कर्म के अंतर्गत आएगा, भक्ति तो चॉइस करते थे, भगवान को अपने आप को पूर्णतया सौंप देना ही भक्ति है। मुझे एक टैगोर की कहानी याद आती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, मुझे तो काफ़ी भूल गई है, लेकिन उसका जो मूल चीज़ है नहीं, टैगोर ने लिखा है कि एक बार वो भिक्षा को निकले, कहानी है, सच्ची घटना नहीं है, तो उन्होंने देखा कि अब भगवान स्वयं अपने सोने के रथ पर चला आ रहा है, तो बोले भगवान ने मेरी ओर देखा और मुस्कराए और अपना रथ रोक लिया। तो मैंने कहा आज तो तेरा दारिद्र धुल गया, भगवान स्वयं मुस्करा लिए, रथ रोक लिया, तो मैं उनकी ओर बढ़ा, भगवान भी रथ से उतरे, तो अपनी झोली उनके आगे फैला, मैं झोली फैलाऊं उसके पहले भगवान ने अपना हाथ आगे कर। तो मैंने कहा कि भगवान ने मेरे साथ बड़ा व्यंग किया, मैं तो मांगने से गया भगवान से। तो बोले मैंने झोली में से चावल का एक दाना निकाला, भगवान के हाथ में रख दिया और बड़े उदास मन अपनी कुटिया पर लौटा, और जब अपनी कुटिया पर लौटा झोली उल्टी तो मेरा मन और उदास हो गया, क्योंकि चावल का एक दाना सोने का हो गया था। मैंने कहा हे भगवान अपना सर्वस्व तुझे क्यों नहीं दे दिया? तो सारी लाइफ की सीक्रेट ये है कि जो हम समझे हमारा है वो मिट्टी है, जो उसका मान लिया वो दिव्य, जो अगर मन को उसका मान लिया उसे सौंप दिया तो ज्ञान आ जाए, प्राण को उसको सौंप दिया तो झूठे संकल्प अपने आप हट जाएंगे, उसके संकल्प अपने आप उठने लगेंगे। शरीर को सौंपना सबसे मुश्किल है, उसमें थोड़ा जड़त्व है, जैसे जैसे सुख होगे रोगों का निवारण स्वयं को प्रभु करेगा, वो सुन तो सर्व आरोग्य कर है। जो सगुण है ना, सगुण के 1000 गुणों का वर्णन है हमारे शास्त्रों में, तो एक ही गुण पर ध्यान करना है। तो समर्पण योग की दूसरी सीढ़ी है। समर्पण क्यों, हमारे शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर छोटा सा उदाहरण दिया है कि आप समुद्र की एक बूंद हाथ में ले लो, है समुद्र की बूंद लेकिन उसकी शक्ति खत्म है क्योंकि समुद्र से अलग हो गई। जब उसको समुद्र में मिला दोगे तो समुद्र की शक्ति आ जाएगी, जहाज को डुबा सकती है, तूफान लगा सकती है। तो इसी तरह जब तक मनुष्य अपने आप को भगवान से अलग बोध करता है अशक्त है। जब भगवान से एक एक करेगा, भगवान की शक्ति भगवान का ज्ञान प्रकट होने लगेगा। नहीं तो एक के नहीं है, हमारा अप्रोच बड़ा साइंटिफिक होना चाहिए। हम हमें बात करके तो हम अपने आप को भी धोखा देंगे, दुनिया को भी धोखा देंगे। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, भगवान मिला तो भागवत गुण जीवन में प्रकट होने ही चाहिए। तीसरा सीढ़ी है अभिप्सा समर्पण। ये हमेशा याद रखिए, 24 घंटे चलने चाहिए। अभिप्सा का भाव, समर्पण का भाव। तीसरा है त्याग। लोग बड़ी गलतफहमी है जीवन का त्याग, दुनिया का त्याग। मुझे कई बार लेडीज कहते क्या करें, मन हटता नहीं है घर से, बच्चे उधम करते रहे, सारा अप्रोच गलत। इसमें भी तो भगवान है, आवाज में भी, उधम में भी भगवान है, कहां नहीं है। त्याग काम क्रोध मदलोभ मोह का त्याग, अंदर के अटैचमेंट का त्याग। हर एक्शन में देखोगे मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन लोभ है तो वही एक्शन गलत है। उस मोटिवेशन भगवान की प्रेरणा है तो गलत नहीं। वही गीता का उदाहरण लियो, जब पहले दिन अर्जुन खेमे पर लौटा, दो चीज समझने की है। ये पहली, तो द्रौपदी जरा गर्म मिजाज की औरत थी, तो उसे बोली मैंने सुना तू जाकर वहां डर गया, तुझे याद आया होगा कि मेरा इंसल्ट हुआ है, ये हुआ है, आई एम ग्लैड यू हैव डिसाइडेड। अर्जुन जवाब देता है द्रौपदी, मैं लड़ने जरूर गया था कि मेरा राज छीन लिया गया है, तेरा अपमान हुआ है, लेकिन मैं अब इसलिए नहीं लड़ रहा हूं कि तेरा मेरा राज छीन लिया गया है, तेरा अपमान हुआ। लड़ जरूर रहा हूं, अब इसलिए लड़ रहा हूं कि कृष्ण का कमान है और कोई रीजन नहीं। ये जीवन की सबसे बड़ी समझने की चीज है कि जीवन का मोटिवेशन एक ही होना चाहिए, भगवान तेरा कमांड है तो ये ठीक है। मुझे मालूम है जब आप जीवन में उतारोगे तो क्या होगा। बहुत वर्ष पहले मेरे एक बहुत नजदीकी व्यक्ति हैं श्री अरविंद के डिसाइपल, उनको अपने लड़के के लिए लड़की देख रही थी, ये भी 30 साल पहले की बात। मुझे बोले भाई जी आप साथ चलो, आप पास कर दिया। चलो हम गए तो लड़का जरा लंबा, लड़की थोड़ी ठीकनी है, तो उन्होंने उसको डिसअप्रूव कर दिया। हम भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप। जब घर लौटे तो दूसरे दिन उनके परिवार के लोग जहाँ मैं ठहरा था मुझसे मिलने आए कलकत्ता। कहा भाई जी आपने तो ओपिनियन नहीं दिया, उस वक्त तो भूल गए अपनी चर्चा में पूछना ही। तो मैंने कहा भाई मेरा ओपिनियन मत पूछो। बोले क्यों? मैंने कहा तुम देखोगे लड़की काली है कि गोरी है, लंबी है कि ठीकनी है, क्या पढ़ी। मैं तो एक ही देखूंगा, तेरा आदेश क्या, इन दोनों की जोड़ी निभेगी, तेरा हुक्म ठीक है, तेरा हुक्म नहीं है तो कोई ठीक नहीं। तो बोले भाई जी नहीं आप कहोगे वैसा करेंगे आप। मैंने कहा मैं जब लड़की की ओर देख रहा था तो मैंने यहाँ उसकी लाइट देखी, मुझे लगता है तुम्हारे घर में आए थे जबकि तुम्हारा सोखा। बोले भाई जी खत्म। अब लड़की घर में आ गई, इतने सुखी है, जिस दिन से लड़की ने घर में पाँव रखा है हर चीज की तरक्की। तो सारा सोच लेने का ये कि भगवान तो कभी नुकसान कैसे कर सकता है। हमारा तो सबसे बड़ा झंझट है कि भगवान में विश्वास नहीं है। भगवान ने 3 है, आज के लिए 3 ही बता रहा हूं, अभिप्सा समर्पण त्याग। इन तीनों साइकोलॉजिकल बुनियादों के बिना आध्यात्मिक जीवन में लंबी प्रगति नहीं हो सकती। उनको मदद पहुंचाने के लिए मंत्र जप, ध्यान, कर्म योग। कर्म योग से क्या मतलब वो भी समझेंगे। मंत्र जप, कोई मंत्र लिया, कोई जपना शुरू कर दिया, उससे कुछ नहीं। मंत्र या तो सिद्ध व्यक्ति के द्वारा मिले या अंदर से स्फुरे, अंदर से स्फुरा हुआ मंत्र तो बेस्ट हो। तो हर व्यक्ति का मंत्र अलग, वो व्यक्ति हर व्यक्ति अपने मंत्र से चले। ओम तो बेसिक मंत्र है भगवान का। मां ने एक बार कहा अगर दुनिया की सब सांस एक साथ कर दी जाए तो ओम शब्द निकले। जितनी हवा की आवाज, मनुष्य की आवाज, जानवर की आवाज, If all sounds are put together, sound will be Om, because all sounds come from Om. तो ओम जपो जिस तरह आपने जपा उसमें पर ढंग है, लॉन्ग ही होना चाहिए, लोग जानते नहीं हो, लॉन्ग ही जपना चाहिए. और अगर आप लॉन्ग शांत होकर जपोगे, आप देखोगे मंत्र का प्रभाव एक दिन में आने लगता है, दस दिन में नहीं. माने मैं कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव माँ के साथ, दूसरे योगियों के साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको ये पता लगे कि आदमी को किस तरह दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए. एक बार माँ ने कहा कि ट्रेडिशनल योग भी सीख. मैंने कहा ठीक है. ट्रेडिशनल योग जब हम सीखने गए आश्रम ज्वाइन करने के बाद की बात है, इंडियन योगी से, तो शुरू में जब उसने हमें बताना शुरू किया साधना, तो मैंने कहा आप इसका मतलब हमें बताओ जिससे कि हम आपको कॉपरेशन दे सके. मतलब कॉपरेशन, आई डोंट केयर फॉर योर कॉपरेशन. ठीक है, मैंने कहा इसलिए बताओ कि आई डोंट ऑब्स्ट्रक्ट द हेल्प यू वॉन्ट टू गिव मी. मेरी ओर देखता है, आई डोंट केयर फॉर योर ऑब्स्ट्रक्शन. तो मैंने कहा इस मंत्र का अर्थ बताओ. अगर मेरे मंत्र में शक्ति है तो तुझे अर्थ अपने आप आ जाएगा. Then he laughed and told me, देख तुझे कोई पॉइजन दे और बता ये नहीं कि ये पॉइजन है, मरेगा नहीं. तो मैंने कहा ये तो ठीक ही है. तो मंत्र में वो शक्ति होती है, अगर ठीक ढंग से दिया जाए, ठीक ढंग से किया जाए, तो वो मंजिल पर अपने आप ले जाता है. और उसके लिए कोई कहता है मुझे लाख गायत्री जप ली, कुछ नहीं. अरे भाई जपने का ढंग ही गलत है, कैसे होगा? ठीक ढंग से जपो तो मैंने कहा एक दिन में फर्क देखोगे, और हर रोज आप देखोगे हाँ आज मेरा और प्रोग्रेस हुआ, आज मेरा और प्रोग्रेस हुआ. तो पहली चीज है मंत्र जप करने का तरीका. मंत्र जप तीनों स्टेज पे होने चाहिए. मन से परे, मन में, वाणी में, तीनों में. वाणी से बुद्ध शुद्धि होती है, वो प्रकाश चारों ओर घर में फैलता है. भले आप मुंह से ना बोलकर जब मूवमेंट ही करो, मन से मनोमय चेतना की प्योरिटी होती है. और वहां से लिंक नहीं करोगे तो नीचे उतरेगा क्या? When you link there and the light descends in your mind and your body, then it will permeate, then it will spread, then it will radiate. वहां का लिंक ही नहीं होगा तो क्या उतरेगा? तीनों मूवमेंट एक साथ होने चाहिए. That means meditation के पहले you must get the contact. Contact can come through साकार. Here comes साकार. So, आपका शरीर है, आपका प्राण है, आपका मन है. आपको या तो आत्मा के लेवल पर उठो और संबंध करो, या वो साकार व्यक्ति जो अपने मन प्राण शरीर में भगवत चेतना को उतार लाया है, उसका ध्यान करने से आपके मन में भी वो चेतना उतरी, आपके प्राण में भी उतरी, शरीर में भी शारीरिक चेतना के अनुसार छोटा मोटा संबंध हुआ. यहां साकार का ध्यान राम का करो, कृष्ण का करो, हनुमान का करो, गणेश का करो. गणेश प्रकाशमय है, ये सभी देवी देवताओं के हड्डी मांस चमड़ी की बॉडी नहीं है. मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं. एक दिन माँ हमें कहने लगी, मुझे कहने लगी कि देख मैं जब फ्रांस में थी कई देवी देवताओं को देखती थी, और देखती थी भैया टाइम हो जाए तो कह देना, आई डोंट वांट टू डिले कि उनके दो रूप है, एक उनका असली रूप जिसमें वो प्रकट, जो उनके लोक का रूप है, और एक जिसमें भगवान भक्त की आराधना के अनुसार प्रकट होती. लेकिन मैंने गणेश को कभी नहीं देखा था. क्या आपने गणेश का जप किया? इसलिए बता दें शिव वगैरह का वो भी अनुभव की चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो सब सत्य है, इमेजिनरी कुछ नहीं. तो मैंने कहा, माँ ने कहा कि हिंदू लोग उसके सूंड बनाते हैं, वास्तव में गणेश के सूंड है कि नहीं, या इनका इमेजिनेशन? माँ ने कहा ऐसा सोचकर मैं ध्यान में गई तो मैंने देखा एक गोल्डन रेड व्यक्ति विद ए बिग ट्रंक, जैसे पांव खड़े हैं लेकिन ऐसे बहता हुआ चला रहा है, यानी पांव के मूवमेंट नहीं हो रहे, बट द होल थिंग इज मूविंग. और माँ के कमरे के आगे जहाँ माँ बैठी थी सामने खड़ा, तो माँ ने कहा, मैंने उससे पूछा कौन है? बोले माँ मैं गणेश. माँ ने कहा तू क्या करेगा? बोले आपके पैसे के संभाल में रखो. तो माँ ने कहा ठीक है. तब तो हमारे आश्रम का आपको खर्चे का आइडिया नहीं है. हमारा खर्चा साल का रिकरिंग 80 लाख रुपए से ऊपर है, और वहाँ आपको नाम का बोर्ड नहीं मिलेगा किसी का. तो जब पैसे की तंगी होती तो एक छोटी सी गणेश की मूर्ति यहाँ रखी थी. माँ ने उसको कही गणेश तू क्या कर रहा है, मुझे तंगी हो रही है. तो कभी गणेश बोलेगा माँ तेरे डिमांड बहुत बड़े हैं, डिमांड करती रहती है, लेकिन वो संभाल चलती ही रहती थी. क्यों नहीं, हर एक के जीवन में वो तो एक शक्ति है. और जैसे मनुष्य का महकमा होता है, हर एक देवी देवता का अलग अलग महकमा है. झगड़ा क्या है, ब्रह्म चेतना से भी संबंध रखो, उनसे भी संबंध रखो, संबंध तो सभी से रखना है. तो अगर आपने ये है अभी तुलसी का रामायण पहला दोहा, ये है वही सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करी वर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सुदन। तो या तो सुमिरन करने से सिद्धि होनी चाहिए, नहीं तो तुलसी की रामायण झूठी है। यानी वी मस्ट टेक देम एट देयर वर्ड, वाई शुड बी अननेसेसरली सफर। अभी आपने कहा वक्त चुन महाकाय आई थी, सूर्य को भी समाप्त होगा, लेकिन यू इज देयर, यू हैव टू मेडिटेट ऑन समबडी हु इज ल्यूमिनस लाइक ए बिलियन सन्स। तो बिलियन सन होगा तो आपको लाइट नहीं आएगी। गायत्री मंत्र जपा जाता है सूर्य, सूर्य के अंदर बैठ ध्यान पूर्वक, वहां नहीं कि जैसे आप सूर्य के अंदर बैठ रहे हैं, आपकी श्वास प्रश्वास प्रकाशमय हो गई है, हड्डी मांस चमड़ी सब प्रकाशमय हो गई है, हड्डी मांस चमड़ी नहीं है, और वो प्रकाश ही आपके द्वारा गायत्री जप रहा। एक दिन जप करते जपते इसी तरह गणेश का ध्यान, प्रकाश प्रकाशमय गणेश का ध्यान करने से वो प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है कि एक जगह अटक गया? सर्वत्र व्याप्त है तो आपकी बाधा क्यों नहीं हटा? वो बाधा क्या है? अंधकारी बाधा है, अज्ञानी बाधा है। तो जो सूर्य कोटि समप्रभा हटाएगा इसमें सोचने की क्या चीज? तो हमारे शास्त्रों के इंद्र क्या है, मरुत क्या है, वरुण क्या है, अगली बार समझेंगे, सरस्वती क्या है, महेश्वरी क्या है, महाकाली क्या है, वास्तव में उनके रंग है जो राम कृष्ण अब स्काई ब्लू देखते हैं, वास्तव में स्काई ब्लू उनका रंग था या नहीं था? स्काई ब्लू उनका होगा, स्काई जो भगवान का अवतार होगा उसका स्काई ब्लू होगा, जो भगवती का अवतार होंगे उनका व्हाइट होगा। आप जब साधना करेंगे तो हर व्यक्ति का ओरा देखेंगे, ओरा से व्यक्ति को जज करेंगे। पर्पल ओरा है तो बड़ा जनरस व्यक्ति है, प्योर रेड ओरा है तो बड़ा वाइट दृष्टि का, बड़ा स्ट्रांग माइंडेड आदमी है, प्योर येलो ओरा है तो मेंटली बड़ा अलर्ट आदमी है, और जो अगर ब्लू ओरा है, डार्क ब्लू है, तो उसमें इंट्यूशन है बट नॉट वेरी हाई इंट्यूशन, और स्काई ब्लू अगर ओरा है तो उसमें तो भगवान की चेतना होता है। तो इस तरह जैसे ओरा देखेंगे, ये योग तो आपकी पर्सनैलिटी को पूर्ण बनाएगा। जैसे मैंने कहा आपकी पर्सनैलिटी हमारी 0.00001% ही नहीं है, तो हर रोज अगर आप कुछ एडिशन करोगे अपनी पर्सनैलिटी को तो काम भी बेटर होगा, जिंदगी का हर काम बेटर होगा। तो जो चीज़ समझ लेने की है कि मंत्र हमको उस शक्ति के नज़दीक ले जाता है जिस शक्ति से हमें संबंध करना है। अगर लक्ष्मी से संबंध करना तो लक्ष्मी का मंत्र जपो, बाधा हटानी है तो अमुक जब मंत्र जपो, लेकिन संबंध सभी से क्यों न रखो? घर में भी तो आप 20 इंस्ट्रूमेंट रखते हो, एक खाना पकाने का रखते हो, एक रेडियो टेप रिकॉर्डर भी रखते हो, तो 20 तरह के मंत्र क्यों ना इंसान जपे जिसमें 200 शक्तियों से संबंध हो, पर एक मंत्र महामंत्र हो जो भागवत चेतना से सभी होने चाहिए। पूर्ण जीवन, अगर आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य आप पूर्णता बनाना चाहते हैं तो आपको आपकी पर्सनैलिटी सफाएंगे। अब जैसा इन्होंने कहा बहन ने, क्योंकि विषय बहुत लंबा, एक महीने तक हम बात कर सकते हैं अलग अलग विषयों की, अलग अलग आदमी कैसे मरता है, कैसे जन्मता है, कहाँ तक चीज़ें प्री डिटरमिन है, कहाँ तक फ्रीडम है। एक चीज़ आपको बोलूँ थोड़े में, फिर कभी बताएंगे, आदमी अपना भविष्य बदल सकता है। जो आप इंसान के मन में बैठ गया कि प्री डिटरमिन है, एक्सीडेंट होना ही था इसलिए हो गया, ये सारा होना था अमुक लेवल पर, लेकिन सब चीज़ें बदली जा सकती हैं। कैसे? इसे दिन मैंने माँ को पूछा, मैंने कहा माँ हर चीज़ प्री डिटरमिंड है या चेंज हो सकता है? मान का चेंज हो सकता है, कैसे? मान का देखो फ्रूट पेड़ से गिर रहा है, उसकी डेस्टिनी जमीन पे गिरेगा, तुमने हाथ बीच में रख दिया तो डेस्टिनी बदल, इस तरह प्रेयर डेस्टिनी बदल। तो मैंने कहा माँ ये प्रेयर का उठना पूरे निश्चित था कि नहीं? सी नबर आश्रम भक्ति इज दियर बट भक्ति ऑफ अनदर टाइप, भक्ति बिकॉज वेन यू सी गॉड हिज ग्रेटनेस, भक्ति तो उपजेगी एज यू गेट नियरर टू हिम, सरेंडर होगा, ये बिना सरेंडर मर्जर हो नहीं सकता उससे। लेकिन जैसे भक्तियों की ज्ञान तो आएगा ही, ज्ञान आएगा तो कर्म करोगे ही। आप अपने बच्चों को बोलते रहें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तेरे क्या कहने, उसको खाने को ना तो कुछ ना करो, तो यू गो ऑन टेलिंग गॉड कि भाई तेरी महिमा के क्या कहने, कैन यू डू नथिंग फॉर इट, यू डू थिंग्स एग्जैक्टली अपोजिट, दैट डजंट गिव यू एनीवेयर, गॉड इज नॉट अ फूल, दैट जस्ट बाय प्रेजिंग हिम यू कैन अचीव, दैट इज प्रेजिंग हिम हेल्प्स टू इवॉल्व इन यू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द डिवाइन, दे kingdom in you, enlightening you, that is good for you. But praising in him is not the end in itself. The end in itself, there is nothing except to be united with him so that he can act in the world. The purpose of creation, srishti ke srijan ka matlab hai, Bhagwan ko prakat karna. Jab tak ye aap laksh nahi banaogi, baki sab laksh adhure, apurn, galat hai. Lok seva ka laksh bhi galat hai. बिना भगवान को पाए लोग सेवा भी नहीं कर सकते। कोई पॉलिटिकल मसला, ये सारे पार्लियामेंट के रूल्स वगैरह सब ज्ञानमय जीवन की निशानी है, वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी और मनी है। जब तक एक नई चेतना, पूर्ण चेतना जागृत नहीं होती है, तब तक जैसे एक दिन प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर से हम दोनों बैठे थे, कोई कारण था, बोले आई फील वेरी डिप्रेस्ड, कोई पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो रहे 5-7 वर्ष के बाद। तो मैंने कहा सारा अप्रोच ही रॉन्ग है, करेक्ट डिसीजन लेना या मेजोरिटी डिसीजन लेना, भले गलती हो। तो बोले करेक्ट डिसीजन लेना है तो मतलब मेजोरिटी तो हमेशा ही गलत डिसीजन लेगी। हाउ ये मेजोरिटी को टेक करेक्ट डिसीजन पर तो दुनिया बदल गई। तो बोले इलाज क्या, हम इलाज बड़ा मुश्किल, आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक मनुष्य रेडी तो हो, यानी जिस दिन आप कहोगे एक आदमी ने माँ को फ्रांस से चिट्ठी लिखी, माँ मैं एक शराब की फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं खुद शराब नहीं पीता, अगर नौकरी छोड़ दूँ तो मेरे बाल बच्चों को क्या होगा। माँ ने जवाब दिया, ये शराब की फैक्ट्री में काम करने का न करने का सवाल नहीं, सवाल यह है क्या तेने अपना जीवन भगवान को सौंपने का निर्णय कर लिया। अगर तू ये निश्चय करेगा तो भगवान तुझे वहां ले जाएगा जहां से ले जाना, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए। तो ऐसे लोग तो रेडी हूं जो भगवान के लिए जीना चाहती हूँ, जो उसकी गाइडेंस लेकर काम करना चाहती हूँ। जब तक ऐसे लोग रेडी नहीं होंगे कैसे दुनिया बदलेगी? और जैसे जैसे लोग रेडी होंगे हर एक व्यक्ति के चारों ओर अपने आप ही समाज बदलना शुरू हो जाएगा। यही तरीका है बदलने का, और कोई तरीका नहीं है। तो सबसे प्रथम जो चीज समझ लेने की है कि भगवत चेतना से संबंध होने से आप एक नए ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। तामसिक मनुष्य एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, रजोमय पुरुष का एक ऑर्गेनाइजेशन, सत्वमय का एक, उससे परे का चौथा ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? मैं आपको तो एक छोटे छोटे अनुभव बताऊं, पर्सनली बताऊं, जिससे कि वो हवाई में हो। आई जॉइन द आश्रम व्हेन आई वाज 30 and really I decided to join when I was 27. So, I was in business and और बिजनेस करियर मेरा रहा होगा 8-9 साल का। लेकिन मन में जरूर भावना थी कि जीवन का कुछ मतलब होना चाहिए। जीवन का क्या मतलब है, इंसान क्यों पैदा हुआ, भगवान को पाने के लिए पैदा हुआ, ये भी मैं मानने को रेडी नहीं था। मरने के बाद तो सबको भगवान मिल जाता है, तो सृष्टि का क्या मतलब? लोक सेवा में कुछ लोग तकलीफ में रहो, कुछ लोग उनकी सेवा करते रहो, ये तो मतलब नहीं हो सकता। समथिंग वाज मिसिंग। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आखिर इंसान बेस्ट क्या कर सकता, अगर पैसे भी कमाए तो मूर्ख का मूर्ख ही रहा, प्रेसिडेंट भी बना, इंडिया का भी बना, तो भी वही इंसान है, वही मूर्ख है, आखिर बेस्ट क्या है? बट दुनिया में बेस्ट क्या है जो इंसान कर सके, हर इंसान कर सके? तो सृष्टि के सृजन का मतलब क्या है, बेस्ट क्या है? और थर्ड क्वेश्चन था, इतने धर्म आए चले गए, इतने चैरिटी हुई, दुनिया तो वैसे की वैसी दुखी है, ज्यादा दुखी है, तो दुनिया के सुख का इलाज है कि नहीं? वो तो मैं अपनी जिंदगी लगाना चाहूँ, लेकिन वो कोई चैरिटी धर्मादे से दुनिया का मसले हल हो पाएंगे, ये नहीं। ये खोज थी, जिंदगी में सब कुछ था, बिजनेस में हम जिस चीज को छुए वही सोना हो जाए, हर डिपार्टमेंट बड़ी बड़ी कमाइयां करा, वो कहता है बड़ा बुद्धिमान है, बुद्धिमान काम है तो मेहनत भी नहीं करता, अपने आप ही होता था जो बता रहे। उस अरसे में एक दिन हमारे एक दोस्त थे, हमारी कोठी भी मलबार हिल पे थी, बम्बे उनकी भी मलबार हिल पे थी, वो भी इंडस्ट्री में बहुत बड़े थे, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। तो मैंने कहा सर, चुनीलाल मेहता सेंचुरी मिल के मालिक थे, आपने नाम सुना, उन्होंने चुनीलाल और मैं अपने गार्डन में बैठे, चुनीलाल की इतनी कंपनी का चेयरमैन है, मैं भी इतनी कंपनी का चेयरमैन हूँ, हमारे क्लियर कराए तो कुछ नहीं होता, जहाँ सोचते नफा वहाँ घाटा होता है, जहाँ सोचते घाटा वहाँ नफा होता है। आदमी को फ्रीडम है ये कहीं दिखती नहीं है, लाइफ मैकेनिकल है ये मानने को मन नहीं करता, आखिर ये मसला क्या है? वो बड़ा बुद्धिमान आदमी था, उसने कहा देख जो आश्रम जाता है वहाँ पैसे वैसे भी देता है, लेकिन जो पढ़ता नहीं है श्री अरविंद की किताब, तो श्री अरविंद की सिंथेसिस जब जो है, तो हमने वो किताब पढ़ी, बीच में आए एक सेंटेंस पढ़ा तो हमारे तीनों क्वेश्चन का उत्तर मिल गया कि लाइफ का एम क्या है, सारी दुनिया कैसे सुखी हो सकती है, पर हाइएस्ट मनुष्य क्या कर सकता है। तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर था, तो मैंने कहा तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है तो फिर कोई चॉइस नहीं है इंसान को। अगर इस तरह अगर इंडिविजुअल भी आपका ये हाइएस्ट है अगर सारी दुनिया को सुखी बनाने का भी तरीका यही है और सृष्टि के सृजन का अभिप्राय मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है तब तो झंझट कर। यह मैं उत्तर एक आपको आज देना चाहूंगा, घर जाकर इस पर मेडिटेशन कर। उत्तर पुराना है, श्री अरविंद के समझाने का ढंग नया था। ये तो उत्तर हमारे शास्त्रों में आ चुका है, हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। श्री अरविंद ने लिखा था, उन्होंने भी यही कहा, सृष्टि भगवान की लीला है। पत्थर में पूर्णतया भगवान है लेकिन पूर्णतया प्रकट नहीं। पशु में, पक्षी में, प्राण में तत्व प्रकट हो जाता है, थोड़ा भागवत चैतन्य विशेष प्रकट हो जाता है। मनुष्य में मनोमय तत्व माइंड है, थोड़ा और प्रकट हो जाता है। भगवान को सृष्टि में, दुनिया में पूर्णतया प्रकट करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य। भगवान को प्रकट करोगे सुखी नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी, पर हर व्यक्ति उसे प्रकट करेगा तो ही दुनिया पूर्ण होगी। उसको प्रकट नहीं करेगा तो पूर्ण दुखमय जीवन रहेगा, भगवान के बिना तो जीवन दुखमय होगा। एक आदमी ने पूछा श्री अरविंद से, हमें तकलीफ क्यों आती है, हमने पाप किए इसलिए आती है? श्री अरविंद ने कहा, नहीं, तकलीफ के दो ही कारण हैं, जब तक वो दो कारण दूर नहीं करोगे तकलीफ दूर नहीं होगी। मनुष्य उन चीज़ों के पीछे भागता है जो नाशवान है, या तो ऐसी चीज़ के पीछे भागो जो नाशवान नहीं, वो तो नाश होगी एक दिन, तो दुख होगा ही तुमको। दूसरा उन्होंने कहा कि मनुष्य की आशा से चीजें कम उतरती है, हस्बैंड हो कि गवर्नमेंट हो कि बच्चा हो, तुम ऐसी चीज जब तक न लोगे जो तुम्हारी आशा से कम न उतरे तब तक तकलीफ होगी ही। मुझे तीसरा रीजन नहीं मिला, सारे दुख के कारण दो ही हैं कि मनुष्य जो आशा लगाता है उससे चीजें कम उतरती हैं, कोई भी चीज पकड़ो, और या उन चीजों के पीछे भागता है जो कि नाशवान है। तो एक ही चीज अगर नाशवान नहीं है जो आशा से कम उतर नहीं सकते, भगवान भागवत चेतना, और तो सभी आशा से कम उतरेगी, क्योंकि मनुष्य की आशा तो बहुत बड़ी है, अमृत्यु की आशा। उसको युधिष्ठिर ने पूछा ना यक्ष ने, कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले सबसे बड़ा आश्चर्य, लोग रोज मरते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, तो मरना नहीं चाहता, इसमें मनुष्य में अमृत्व की खोज है इसलिए मरना नहीं चाहता है। ये हंसने की चीज नहीं है, ये खोजने की चीज है कि मेरे में क्या चीज है जो अमृत्व चाहती है, तो क्या अमृत्व मिल सकता है। मैं कहता हूँ पुराना जमाना था जबकि अमृत्व अंदर ढूंढना पड़ता था, श्री अरविंद के योग शरीर को बदलकर अमृत्व जड़ पदार्थ में अमृत्व लाओ, इसमें क्या मिला? अगर ऐसे शरीर का निर्माण हो सके जिसमें रोग न हो, बुढ़ापा न हो, तो सबसे बड़ी साइंटिफिक रिसर्च होगी कि नहीं होगी दुनिया की? अगर ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं, जहाँ किसी को पैसे के लिए काम ही ना करना पड़े, कोई ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, कोई मालिक नौकर हो ही नहीं, तो इससे बढ़कर समाज के निर्माण क्या होगा? और जब तक ये दोनों ही नहीं होते हैं अज्ञान में ही, ये ऐसे आध्यात्मिक समाज का निर्माण करना और भगवान का बन जाना, पूर्णतया बन जाए। शुरुआत तो होती है इमेजिनरी बन जाने से, लेकिन ये बोध होना कि अनुन में वही प्रकट है, सब में वही प्रकट है, ये लिविंग फैक्ट हो जाना चाहिए लाइफ, उसी में इंसान के लिमिटेशन हटेंगे, उसी में भगवान पूर्ण जीवन बिता सकेगा, उसमें आपका भौतिक जीवन भी अपनी प्राप्त, उसके बिना सब। तो अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, लक्ष्य बना, उस आध्यात्मिक जीवन का भी लक्ष्य, तो लक्ष्य होना चाहिए भगवान बन जाने, और बनने का तरीका अभिप्सा समर्पण है। और त्याग में एक लास्ट चीज, एब्डिकेटिंग योरसेल्फ, अपने काम करते मैं नहीं कर रही वो कर, ये लाना ही पड़ेगा। सुनते हो अपने आप को एब्डिकेट करो, तू सुन, बोल रहे हो तू बोल, आप देखोगे क्या अपने आप फेंसेस टूट करके भगवत चेतना प्रकट होने लगती है। अरे तो पहुंच गया, मुझे तो सोचा ही नहीं था। और कैसे पहुंचेगा वो एक दो चीजें बताऊं, फिर आज का खत्म करेंगे। जिंदगी कई अनुभव है, एक छोटा सा, जब हमने आश्रम ज्वाइन कर लिया उसके 20 साल बाद श्री अरविंदो की सेंटेनरी मनाई, हम टूर करके लौटे तो माने कहा कि तुझे पेरिस जाना है, श्री अरविंदो की सेंटेनरी का रेजोल्यूशन मीनस को क्या देगा? मैंने कहा माँ, ये सितंबर महीना हो गया, इंडियन डेलीगेशन बन गया, मैं तो डेलीगेशन का मेंबर भी नहीं हूँ, और यूनेस्को कहाँ से जाना, मेरे पास तो पैसे भी नहीं, आश्रम ज्वाइन किया तो सर आश्रम को दे दिया, मेरा तो पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपको किसी ने कहा इसको भेजो तब तो फिर, अगर आपकी मर्जी हो तो जल्दी जाएंगे। वहाँ से मैंने कहा तुझे फ्रेंच नहीं आती, तुझे फ्रांस पसंद नहीं है? मैंने कहा नहीं, मुझे फ्रांस पसंद है, मैं जब वहाँ गया तो 20 साल पहले गया था, तो मेरे को हर चीज़ पहचानी लगी, जैसे मेरा गया जन्म फ्रांस में हुआ होगा, तो फ्रेंच भाषा मुझे इनफ आती है कि अपना काम चला सकता, फिर जाता है। ठीक, अपने कमरे पर लौटे तो मैंने कहा कल दिल्ली में मीटिंग है सेंटेनरी कमेटी की, उसमें जाना है, पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो चुका है, किस तरह करेंगे। तो हमने कहा चलो दिल्ली तो चलो। तो मैंने मद्रास फोन किया, मैंने कहा भाई कल की सीट दे, यानी इंसान क्यों मरता खपता है जबकि भगवान उसकी इतनी बड़ी मदद कर सकते। उन्होंने बोला कल की सीट नहीं। मैंने कहा तुम्हारा स्टेशन डायरेक्टर अनवर अली है उसको देना जरा। बोला अनवर अली छुट्टी पर। तो मैंने कहा हमारी भी छुट्टी हो गई, अगर किसी से तो पहचान नहीं है कल के लिए। तो अपने कमरे से हम फिर श्री अरविंद की समाधि पे, मैंने कहा भगवान तो मुझे ले जा रहा है टूर पर और तुमको दिल्ली की सीट तो दिला ही नहीं सकता, ये कैसे काम। हम लौटे बस 15 मिनट के अंदर, तो मुझे कल दिल्ली से लाइटनिंग कॉल आता, भाई जी आपको अमुक काम में कंसल्टेशन है आपका, आप कल ही दिल्ली आओ। मैं तो आना चाहता हूँ, मेरे को सीट नहीं मिल रही है। बोले कि सीट का खर्चा हम देंगे या रहने का खर्चा हम देंगे, तो आधे घंटे में आईएसी को फोन पहुँच जाएगा आपको सीट देने के। मैंने कहा ठीक। हमने आधे घंटे बाद फोन किया तो आईएसी वाले बोलते हैं सर आपने दिल्ली फोन किया। मैंने कहा नहीं दिल्ली ने मुझे फोन किया। तो समझेंगे ही नहीं क्या हुआ। इतने में मेरी सेक्रेटरी आती है, वो सिंधी महिला है बहुत बड़ी लिखी बेचारी, आई थी 20 साल की, उसको आश्रम में ही हो गए हैं 20 साल से। तो बोले कि भाई जी ये चिट्ठी आई है, एक पासपोर्ट ऑफिसर की चिट्ठी, तो पंडित नया ट्रांसफर होकर आया मद्रास और उसने लिखा मुझे माँ के दर्शन चाहिए, मैं आप मेहरबानी करके उसको ट्रंक कॉल करके बोलो माँ के दर्शन तो हो जाएंगे, मेरा पासपोर्ट आज ही रिन्यू कर दे, मैं भेज रहा हूँ आदमी का। उसने कहा हाँ भेज दो आज ही रिन्यू। हम दूसरे दिन कहाँ गए, मीटिंग हुई उस कमेटी की चेयरमैन इंदिराई जी थी उन दिनों। तो मीटिंग के बाद एजुकेशन मिनिस्टर बोले कि अगर श्री अरविंदो की सेंटेनरी में आई जा रही है, हमने आश्रम से तो किसी को लिया ही नहीं, अगर भाई जी मंजूर करें तो इनको ले लेते हैं डेलीगेशन। आधे मिनट में डेलीगेशन भी हो गया। बम्बई में हमारे एक मित्र हैं कलकत्ते में, उनको पता लगा मैं जा रहा हूँ, तो बेचारे वो एक कलकत्ते से एक बम्बई से पैसा लेकर पहुँचे, भाई जी के पास पैसा नहीं है सब काम है। वहाँ बहुत घटा 50 कंट्रीज में हम गए, अपने आप पैसा पहुँचता है अपने आप बिना मांगे, कैसे दो उदाहरण दूँ। कहने का मतलब ये है इतना मन में खटने की दरकार नहीं है, अगर भगवत चेतना में अपने आप को लीन रखोगे तो बाहर का कार्यक्रम अपने आप चलता रहेगा। ये कोई भगवान के स्तुतिगान की दरकार नहीं है, अपना जीवन बेटर बिताने का तरीका। तो जब मैं पेरिस में था सबसे पहला तो ये तमाशा हुआ कि जब मैं श्री अरविंदो का रेजोल्यूशन पेश कर रहा था, मेरे दहने और हंगेरियन बैठा था, वो बोलता सर मैं तो श्री अरविंदो को पढ़ रहा हूँ किसी डेली पेपर का एडिटर। मेरे बाएं और इंडोनेशियन भाई बोला सर मैं तो पांडिचेरी को आया। जब रेजोल्यूशन आया वोटिंग के लिए तो मैंने देखा हंगेरियन वोटिंग कर, तो मैंने कहा इन सब के वोट के बिना तो वहाँ पर रेजोल्यूशन ही गिर जाएगा। तब मैंने देखा सब वो रशियन डेलीगेट की ओर देखा। मैंने कहा हे भगवान हमको पता नहीं था कि यहाँ भी कन्वासिंग होती है, हमने तो किसी से बात ही नहीं की, आज तो हमारी इज्जत गई। बस हमने यही कहा हमारी इज्जत गई कि वो रशियन लेडी जो उनकी लीडर थी उसने हाथ उठाया, सबके हाथ उठ गए और हमारा रेजोल्यूशन पास हो गया। लेकिन तमाशे की चीज़ क्या है, जब हम बाहर आए तो रशियन लीडर मेरे पास आती है, कहती है सर हमने आपके लिए वोट किया है लेकिन आप जो कहते हैं उसमें हमारा विश्वास नहीं है। मैंने कहा कि वी डोंट बिलीव व्हाट यू से। तो मैंने कहा ठीक मैं मॉस्को आ रहा हूँ तब बात करेंगे, आज विश्वास गैर विश्वास हमने तो 10 मिनट बोला है, उसमें कौन सी फिलोसफी बताई। तो मनुष्य एक भगवान की शक्ति है से संबंध होने से काम स्वयं चलता है। मां मिनिस्टर ने कहा कि हम सब एम्बेसडरों को लिख देते हैं अब आप आई हो तो आप दूर कर जाओ। मनी मन का पैसा तो नहीं है, ये कह रहा है भगवान भेजेगा कहीं से। दूसरे दिन मेरे मित्र हैं, मित्र उन दिनों इतने ज़्यादा नहीं थे, सडनली उनका ट्रंक कॉल आया, बोले तो भाई जी हमने आपको BBC के टेलीविज़न में देखा, वो लुई माला आए थे मेरा इंटरव्यू कर गए थे उनकी फिल्म में, तो मैंने पुंडीचेरी फोन किया पता लगा पेरिस में हो, आप लंदन होते जाना हमारे साथ। तो मैंने कहा अभी प्रोग्राम निश्चित नहीं निश्चय होने से। तो वो दूसरे दिन उनके वहाँ आ गया कि ऐसा नहीं हो आप बिना मिले चले जाओ और अगर आपको और टूर वगैरह करनी तो खर्चा मैं दूँ। मैंने कहा ये भी बड़ा तमाशा है, वो यहाँ कर बोलता खर्चा मैं दूंगा और सारा ऐसी प्रोग्राम बनता ही चला गया कि हम तो तंग आकर लौट गए। मैंने कहा 4 महीने हो गए मुझे पुंडीचेरी में भी काम देखना और जितने पैसे पास थे उससे ज़्यादा ही जेब में थे लौटे तक। तो मैंने देख लिया कि इंसान बिना काम के उसका एटीट्यूड ना हो, एटीट्यूड करेक्ट करेगा तो भगवान के पास में खड़ा है अंदर एक मिनट में एक्टिव हो जाएगा। तो हम उसको एक्टिव होने तो दें। एक्टिव होने के बारे में ये द्रौपदी की जो कथा है बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब उसकी साड़ी दुशासन खींचने लगा चिल्लाती रही कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण नहीं आए, उसके हाथ छूट गए, उसने एकदम कि अब तो बच सकती नहीं थक गई तब कृष्ण। तो शाम को जब कृष्ण लौटे तो कृष्ण के धर्म बहन थी द्रौपदी, बड़ी खफा हुई कि कैसा धर्म भाई है, तो बहुत झूठा है। लोग जो कि ये कहते थे कि झूठा है, वास्तव में तो झूठा है। अरे मेरी बेइज्जत होने की नौबत आई, थोड़ा पहले नहीं आ सकता था? बोले द्रौपदी तुमने क्या कहा था? तो द्रौपदी ने क्या कहा था महाभारत में, हा कृष्ण द्वारिका वासी नंद गोपादि रक्षक कोरही परिभूतांग मांग किन्न जाना शिक्षक। मैंने मुझे द्वारिका से बुलाया, हा कृष्ण द्वारिका वासी, घटगढ़वासी कृष्ण से को तो नहीं बुलाया, तो हमें में देर लग जाती है, जो नाराज हो रही है। तो भगवान को हम हमारे भावना से सीमित कर देते, भगवान तो वहां है, आवाज पहुंचेगी कि नहीं, हमने भगवान के लिए क्या किया जो हमारी मदद करेगा। अरे वो बनिया है जो हिसाब देखेगा, वो तो भगवान है। और अगर मान लिया कि हम सबसे भी बड़े पापियों, तो अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा कि अभी तक तो इतने पापियों का तोड़ा, किसी बड़े वाले का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नया रिकॉर्ड कायम करेगा। तो इंसान दुख पाता है अपनी मूर्खता और ज्ञान के कारण। दुख का दुनिया में कोई कारण नहीं है, दुनिया दुख का स्थान बिल्कुल नहीं है, दुनिया तो भगवान का स्थान है। इसमें भगवान को प्रकट करो, भगवान को जीवन में लाओ, अपना जीवन पूर्ण बनाओ। उसको कहो हम तेरे कैसे तेरा बनना नहीं आता है, लेकिन तेरा बनना चाहते हैं, तू बता क्या करें। और सोमनाथ के मंदिर की तरह का समर्पण नहीं, भगवान सब कर दे। मैंने एक दिन कहा, गॉड कैन वर्क थ्रू यू बट नॉट फॉर यू। यानी तुमको जैसे अर्जुन ने कहा यूज कर, तो ही विल यूज यू, बट यू कहते तू सारा खाना पका, मैं सोने जा रही हूँ, पका सकता है, बट डेट इज नॉट द वे टू सरेंडर टू। मैं पका ये नहीं कहूँगा, इसकी तो कोई लिमिटेशन नहीं कर सकते, वो क्या करेगा, आपके भाव को रिस्पॉन्ड करेगा। किसी का भाव ये तो उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। वो तो भगवान अनंत, उसकी कथा हरि अनंत हरि कथा। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ।
मैं क्वेश्चन पूछना चाहती
हूँ, श्री अरविंद का हर चीज के बारे में विचार साइंटिफिक है। मूर्ति पूजा वैदिक काल में नहीं थी, मूर्ति पूजा पीछे आई क्योंकि हमारे पूर्वजों ने देखा कि जब लोगों के अंदर की आस्था कमजोर पड़ने लगी, तो उन्होंने मूर्ति पूजा को बड़ा साइंटिफिक रूप दिया। पहले तो मूर्ति किस चीज की बने, तो उन्होंने जो अंदर आकार देखे, जैसे श्री अरविंद ने वेद पढ़ने के पहले तीन देवियों के दर्शन किए, और जब वेद पढ़े तो उनका वर्णन देखा। तो जैसा मैंने आपको गणेश के बारे में कहा, हमारे प्रतिष्ठा सार संग्रह किताब, उसके अंदर जो देवी देवताओं के उल्लेख किए आकार के, एक्चुअली अंतर जगत में उनके वो आकार है। तो आप पहले तो उस आकार की मूर्ति बनाओ, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करो। हर पत्थर को आप नहीं पूछती, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर। फिर मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, ध्वज स्तंभ ये है, गर्भगृह ये, तो मनुष्य के चेतना के लेकर उन्होंने मंदिर के आर्किटेक्चर की रचना की। तो मूर्ति पूजा के तीन रूप है। हमारे आश्रम में मूर्ति पूजा पर जोर बिल्कुल नहीं, डेली तो जोर किसी चीज पे, मंत्र पे भी जोर नहीं। और साथ में ये फ्रीडम कि हर व्यक्ति वो करे जो उसको सहायक हो। अगर आपको मूर्ति पूज कर सहायता मिलती है, आप जरूर पूजो, बनाई नहीं है, आपको मंत्र जप के सहायता मिलती है, आप जरूर जपो। तो आश्रम के अंदर मूर्ति पूजा पे जोर नहीं है, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं है। हर व्यक्ति को जिस साधना से मदद मिलती है, वो साधना करे और उसमें आगे बढ़े। अंत में तो साधना में आगे बढ़ना चाहिए।